समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार सुप्रभात श्रोताओं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ में कि जीतने से पहले अपनी जीत और हारने से पहले कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए। और क्योंकि आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं, तो कहा जाता है कि द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। सो आज हार जीत का फैसला है और आज पूरे दिन देखते रहेंगे आप उन परिणामों को। और अभी जो कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं आज सवेरे, उसमें 7:30 पर नई सुबह में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मुख्य समाचार और साथ ही कई सारी रोचक जानकारी लेकर हाजिर हैं। आज सवेरे के संक में मैं हूं आपके साथ दिव्या तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। रेनू, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Divya and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. और आपके बहुत ही सुंदर सुविचार के साथ दिव्या, क्यों ना हम शुरू करें आज की हेडलाइंस का।
जी, झारखंड में दो चरणों और महाराष्ट्र में एक ही चरण में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना आज होगी। 15 राज्यों में 48 विधानसभा सीटों और 2 संसदीय सीटों के उपचुनावों की भी मतगणना आज ही की जाएगी। मतों की गिनती सुबह 8 डाक मतपत्र के साथ शुरू होगी। झारखंड में प्रत्येक मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के जिला मुख्यालयों में 24 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 9, राजस्थान के 7, पश्चिम बंगाल के 6, असम के 5, बिहार और पंजाब के 4-4 और कर्नाटक के 3 तथा केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम के 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए गए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय और उत्तराखंड में भी 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र और महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव कराए गए हैं।
Prime Minister Narendra Modi has said that the world is now acknowledging India's strategic importance due to the mantra of reform, perform and transform being implemented by his government over the last 10 years. Prime Minister said this while addressing an event through video conferencing which was organized by a media house in Germany, Stuttgart. The theme of the event was India-Germany, a roadmap for sustainable growth. Mr. Modi said that India is the fastest growing economy in the world and every country wants to collaborate with India for development. Mr. Modi added that focus on India document of Germany is an example of it and this document reflects that how the world is acknowledging India's strategic importance. Prime Minister said that India has introduced new policies for every sector and prepared itself to achieve a rapid growth in 21st century. Mr. Modi said that his government has brought to an end the red tapeism to promote ease of doing business. He said India has strengthened the banking system in the country to make available affordable capital for development. The Prime Minister highlighted that a strong foundation has been laid on which the grand edifice of Vikasit Bharat will be built.
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। सुकमा जिले के कोंटा इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान भेज्जी के जंगलों और पहाड़ियों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में ये माओवादी मारे गए। सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा मौके से AK-47 और एक सेल्फ लोडिंग राइफल समेत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है।
The Central Board of Secondary Education, CBSE, has invited online applications from eligible students for the Merit Scholarship Scheme for Single Girl Child. It has invited applications for the CBSE Merit Scholarship Scheme for Single Girl Child to pass Class 10 in 2024 from CBSE and is studying in Class 11 at CBSE-affiliated schools. Additionally, online applications are also invited for the renewal of the CBSE Single Girl Child Scholarship for Class 10 awarded in 2023. The last date for submission of online applications is the 23rd of next month. The details, eligibility conditions and the online application form are available on the CBSE website. President Draupadi Murmu has said that the Kalinga War chapter of Odisha's history can show the path of peace to the world. Inaugurating the three-day Odisha Parva program at JLN Stadium in New Delhi yesterday, the president said the Kalinga War turned Chand Ashok into Dharma Ashok. President Murmu said this war teaches people that peace is more important for progress. The president mentioned that some parts of the world are facing conflicts today. The president said that the most important aspect of Odisha's culture is tolerance. President Draupadi Murmu urged people to live with affection and harmony and work to the best of their ability for India and Odisha. The president said that Odisha Parva has played an important role in making people aware of the rich heritage of Odisha's art, literature, dance, music and cuisine. Moving on to some international news, President-elect Donald Trump has nominated billionaire Scott Bessent as Treasury Secretary. Bessent, CEO of Key Square Group and a seasoned investor, will lead Trump's economic agenda, including tax cuts, addressing the federal deficit, and boosting U.S. energy dominance. Trump praised Bessent as a top economic strategist, saying he will help drive a golden age for the U.S. economy. The Treasury role involves shaping domestic and international policy, including managing trade ties amid plans for sweeping tariffs. Bessent, a former Trump advisor, is tasked with navigating potential trade tensions while advancing the administration's economic goals.
चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत की शीर्ष जोड़ी चिराग सेटी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी का मुकाबला आज दक्षिण कोरियाई जोड़ी जिन योंग और सीओ सेउंग जे से होगा। चीन के शेंजियन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने कल डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कॉप रास्मुसेन की जोड़ी को हराया था।
And in cricket, Australia will resume the first innings with overnight score of 67 for 7 against India in the opening test match of the Border Gavaskar Trophy in Perth this morning. The match is scheduled to begin at 7:50 a.m. IST.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। और अब आज सवेरे के सेगमेंट में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले बात करते हैं
चेन्नई की। बिल्कुल जी, थैंक यू। Moving on to Chennai, yes, Sandeep Shukla of IIT Kanpur has said that India must establish its own threat hunting mechanisms rather than depending on threat intelligence services from external malware research communities. Addressing an international conference at Thanjavur, he said that this approach enables more effective analysis, detection and mitigation of targeted APTs while addressing bias, subjectivity and inconsistencies in the threat attribution process. The two-day conference is jointly organized by Sastra Deemed University and Deakin University, Australia. More news from Chennai. Three people were killed and 18 people suffered injuries when a private bus rammed into a lorry at Rasipuram in Namakkal district last evening. The front tire of the bus is said to have burst and the vehicle went out of control and directly hit a lorry. The injured passengers were admitted to the government hospital at Rasipuram and Salem. Inquiry has been ordered into the incident. State Minister M. Madhivendan and District Collector visited those who were admitted at the hospital. Moving on to you, दिव्या, आज क्या सुना रहे हैं आप हमारे को मेट्रो न्यूज में?
बिल्कुल, दिल्ली चलते हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि इन नियुक्तियों से सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को कम करने में मदद मिलेगी। श्री सक्सेना ने बताया कि बीते दो वर्षों में दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से लगभग 22,000 लोगों को स्थायी नौकरियां दी गई हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मुख्य सचिव को वायु गुणवत्ता में हो रहे सुधार को बनाए रखने के लिए ग्रैप प्रतिबंधों के क्रियान्वयन की निगरानी और सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय रखने के लिए कहा है। मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में श्री राय ने कहा कि सभी विभाग ग्रैप निर्देशों के पालन के संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट देंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2022 और 2023 के लिए मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला ने पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूपों के क्षेत्र में युवा कलाकारों को सम्मानित करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत दिल्ली की कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृहमंत्री ने आज दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री शाह ने कहा कि दिल्लीवासियों को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराना प्रत्येक पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, द फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड अ शी इंस्पायर्स एग्जीबिशन यस्टरडे एज पार्ट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे इन इट्स प्रीमिसेस इन बेंगलुरु। द फेडरेशन प्रेसिडेंट एम जी बालकृष्ण इन्फॉर्म दैट विमेन एंटरप्रेन्योर्स वर फेलिसिटेटेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। He stressed that women entrepreneurs are second to none while excelling in business. During the event, 50 women entrepreneurs had exhibited their products in the exhibition. More news from Bengaluru Metro. To provide enhanced banking services to its employees, Southwestern Railway Division has partnered with the State Bank of India under the Railway Salary Package. This will provide tailored financial solutions, including the automatic upgrade of existing SBI salary accounts through a simple application process. The railway employees can enjoy anywhere banking through internet and mobile banking platforms, including YONO app. The package offers personalized financial advisory services. The employees will benefit from comprehensive insurance coverage with 1 crore rupees personal accident insurance and 1.6 crore rupees air accident insurance.
और अब बात करते हैं मुंबई से मुख्य समाचारों की। मराठी नाट्य कलाकार संघ ने इस वर्ष के प्रतिष्ठित रंगकर्मी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए वरिष्ठ अभिनेता मोहन जोशी के नाम की घोषणा की है। ये पुरस्कार सोमवार को मुंबई के माहिम माटुंगा स्थित यशवंत राव चौहान ऑडिटोरियम में विश्व रंगमंच दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मोहन जोशी के साथ एक खुला साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। मराठी रंगमंच को अपना जीवन समर्पित करने वाले महान अभिनेता पिंडारकर की जयंती मनाने के लिए 2014 से विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। वहीं राजस्व खुफिया निदेशालय ने कल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक लाइबेरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने सियरा लियोन से मुंबई की यात्रा करने वाले यात्री को हिरासत में लिया। विस्तृत जांच में बैग के नीचे एक नकली बैग में छिपाए गए सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के दो पैकेट मिले। फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करके पदार्थ की पहचान कोकीन के रूप में की गई। कुल 3,496 ग्राम कोकीन जब्त की गई, जिसकी कीमत अवैध बाजार में लगभग 34.96 करोड़ रुपए है। इसके बाद यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं मध्य रेलवे ने रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और नागपुर के बीच 10 विशेष ट्रेन यात्राएं चलाने की घोषणा की है।
And moving on to Hyderabad Metro, 6 pharma companies have come forward to make investments of over 5,000 crore rupees in Hyderabad. The companies have entered into MOUs with the Telangana government to expand operations and also establish pollution-free green pharmaceutical plants. The representatives of pharma companies held talks with Chief Minister Revanth Reddy and Industries Minister D. Sridhar Babu in Hyderabad yesterday. The companies include the MSN Group, Loris Labs, Gland Pharma, Dr. Reddy's Laboratories, Aurobindo Pharma, and Hetrio Labs. The representatives of these companies signed MOUs to set up plants investing around over 5,260 crore rupees, creating over 12,000 jobs. An official release stated that the government will allocate land for setting up the new manufacturing units in Pharma City.
और अब बात कोलकाता की. पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज होगी. मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी. मतगणना केंद्रों के बाहर 270 मीटर की दूरी तक 163 बीएनएस की तैनाती की जाएगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. सभी केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी. कूच बिहार के सिताई, अलीपुर द्वार जिले के मदारीहाट, उत्तर 24 परगना जिले के हरुआ और नेहाटी, बांकुड़ा जिले के तालडांगरा और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के मेदिनीपुर में 13 नवंबर को उपचुनाव हुआ था.
And moving on to IFFI, as the excitement of the 55th International Film Festival of India unfolds, day 3 promises a blend of tradition and creativity today.
Today's spotlight is on the 48 hours challenge, Creative Minds of Tomorrow. With just 4 hours left on the clock, young filmmakers are racing against time to deliver cinematic magic. The 48 Hours Challenge is a test of creativity, teamwork, and storytelling prowess. Teams of budding filmmakers are tasked with creating a short film. The challenge showcases the sheer dynamism and talent of India's emerging creative minds. For many, this platform is more than a competition. It's a launch pad for their careers, showcasing their potential to industry stalwarts. At the event, Akashwani talked to Team Pink, one of the 5 teams participating this year. Amartya Rishi, a film editor, explained the intense process behind the challenge and how it fosters innovation.
This journey is amazing and we are feeling very lovely. So this is the 4th edition of we are having full 100 creative minds. The applications are invited 1 or 2 months before from CMOT on IFFI Goa website. There is a form you have to fill. There are compliances you have to meet. After that, you have to submit your film, your trailers, your filmography, etc. Then if you are eligible, they will call you. There is a great grand jury. In this 48 hours, we are given a topic and equipment, gears, locations. We go shoot in the first 26 hours and the rest of the time is for editing. And in the 48 hours, we have to deliver the whole film along with everything done.
Meanwhile, another member of Team Pink, Ganesh Ramesh, shared insights on the intricate aspects of writing and direction. Ganesh reflected on the pressure of the ticking clock and the creative strategies needed to overcome challenges. Just hours to go, the 48 hours challenge not only celebrates creativity, but also offers young filmmakers a platform to sign, proving that the future of Indian cinema is in capable hands. For Aaj Savere, with Durgesh Bhadauria, this is Om Vesh Upadhyay, Panji, Goa.
और आज सवेरे में अब बात महानगरों के मौसम की. दिल्ली में आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा. हालांकि हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है. वहीं कल का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में आसमान साफ रहेगा जबकि सुबह धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता में मौसम साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
और अगर हम साउथ में चलें तो चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 16 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज. हैदराबाद is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 15 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और आज राष्ट्रीय काजू दिवस है. रेनू, और कहते हैं कि काजू विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ड्राई फ्रूट है। इस नट में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, सेलेनियम जैसे कई पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, और काजू के पेड़ की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी ब्राजील में हुई थी।
बिल्कुल।
और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ था।
Yes, I'll begin with the year 1904 on this day, that is the 23rd of November, the third Olympic Games concluded in St. Louis, America. On the same day, 1936, the first issue of Life, a magazine known for photojournalism, was published. And on the same day, in 1955, Britain transfers the Cocos or Keeling Islands in the Indian Ocean to Australia.
और 1983 में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 2002 में G20 की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। 2006 में अमेरिका ने रूस की जेट निर्माण कंपनी सुखोई से प्रतिबंध हटाया। 1890 में अगर हम पीछे जाएं तो वहां इटली में आम चुनाव हुए थे आज ही के दिन, और 2008 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दूसरे चरण में 65% वोट डाले गए थे, और 2009 में फिलीपींस में आज ही के दिन 32 मीडिया कर्मियों की हत्या हुई थी।
एंड इफ आई टॉक अबाउट द ईयर 1991 ऑन 23rd ऑफ नवंबर, भास्कराचार्य रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट धुले। And yes, let's go to our segment of births and deaths. Divya, किससे शुरू करते हैं आज हम?
तो आज हम शुरू करते हैं क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार और पत्रकार सखाराम गणेश देउस्कर से, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। ये भारतीय जनजागरण के ऐसे विचारक थे जिनके चिंतन और लेखन में स्थानीयता और अखिल भारतीयता का अद्भुत संगम था। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पक्के अनुयायी थे, और बंगाल में जनजागृति लाने के कारण इन्हें बंगाल का तिलक कहा जाता था। हिंदी के प्रचार के लिए भी ये निरंतर प्रयत्नशील रहे। राष्ट्रभक्त सखाराम गणेश देउस्कर का बेहद कम उम्र में 23 नवंबर 1912 को निधन हो गया था। सखाराम गणेश देउस्कर के ग्रंथों और निबंधों की सूची बहुत लंबी है, और डॉक्टर प्रभुनारायण विद्यार्थी ने एक लेख में देउस्कर की रचनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रमुख ग्रंथ हैं महामती रानाडे, झांसी राजकुमार, बाजीराव आनंदीबाई, शिवाजी महत्व और शिवाजी शिक्षा। सखाराम की अध्यक्षता में ही कोलकाता में बुद्धिवर्धनी सभा का गठन हुआ था। इस सभा के माध्यम से युवकों के ज्ञान में वृद्धि तो होती ही थी, और साथ ही इन्हें राजनीतिक ज्ञान भी प्राप्त होता था।
And today is the death anniversary of Roald Dahl, who was a British author of popular children's literature and short stories, a poet, screenwriter, and a wartime fighter ace. His books have sold more than 300 million copies worldwide, and he has been called one of the greatest storytellers for children of the 20th century. Unhone itni achhi kitabe likhi hain Divya, bachchon ke liye. So I'll just mention a few books that he has written for children especially. It includes James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Witches, Fantastic Mr. Fox, The BFG, The Twits, George's Marvelous Medicine, and Danny, The Champion of the Worlds. His works for older audiences include the short story collections Tales of the Unexpected and The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More. And his awards for contribution to literature include the 1983 World Fantasy Award for Life Achievement and British Book Awards Children's Author of the Year in 1990. In 2008, the Times placed Dahl 16th on its list of 50 greatest British writers since 1945. And in 2021, Forbes ranked him the top earning डेड सेलिब्रिटी।
और रेनु, आज ही भारत के प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक, भौतिकविद और वनस्पति वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि है। जगदीश चंद्र बोस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता भी माना जाता है। आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे कि वेव गाइड, ध्रुवक, पराविद्युत लेंस, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का 19वीं सदी के अंतिम दशक में बोस ने आविष्कार किया था और उपयोग किया था। बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार भी किया था जिससे पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया। इसीलिए उन्हें 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी और जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुने गए थे बोस। बोस ने अपना पूरा शोध कार्य किसी अच्छे महंगे उपकरण प्रयोगशाला से नहीं किया और इसीलिए जगदीश चंद्र बोस एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने का सोच रहे थे, हालांकि वो नहीं पूरा हो पाया। तो वो बोस इंस्टीट्यूट इसी विचार से प्रेरित है और विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है।
एंड दिव्या, आपको एक बात और बताना मैं यहाँ चाहूंगी, अ क्रेटर ऑन द मून वॉज नेम्ड इन हिज ऑनर, आपको पता है ये?
जी।
लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पर्सनालिटी।
फिल्म अभिनेता तथा टीवी कलाकार विश्वमोहन बडोला की भी आज पुण्यतिथि है। वो थिएटर की दुनिया की जानी मानी हस्ती थे। उन्होंने पेशेवर पत्रकार के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की, लेकिन बाद में कला जगत का रुख किया और दिल्ली के थिएटरों में काम करने लगे। उन्होंने जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार के पिता का रोल भी निभाया और विश्वमोहन बडोला ने कई टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में काम किया। विश्वमोहन बडोला ने अपने 5 दशक के करियर में आकाशवाणी के लिए 400 से अधिक नाटक किए। उन्होंने आशुतोष गुवारिकर की फिल्म स्वदेश समेत कई लोकप्रिय फिल्मों में भी काम किया।
Moving on to birthdays, today is the birthday of Miley Ray Cyrus, who is an American singer, songwriter and actress and regarded as a pop icon. She has been recognized for her evolving artistry and style, having been dubbed the teen queen of the 2000s decade. Cyrus is cited as one of the few examples of a child star with a successful music career as an adult. The daughter of country singer Billy Ray Cyrus, she emerged as a teen idol at age 13 as the lead character in the Disney Channel टेलीविजन सीरीज हैना मोंटाना। पर यहाँ पे पहले हम इनका एक गाना सुन लेते हैं, एंजल्स लाइक यू। Today we are remembering Geeta Dutt, born Geeta Ghosh Roy Chaudhary, who was an Indian classical and playback singer. She found particular prominence as a playback singer in Hindi cinema and Bengali cinema and is considered one of the best playback singers of all times in Hindi films. She also sang many modern Bengali songs in the non-film genre. Lekin yahan pe Divya, isse pehle ki hum aur baat karein itni mahan kalakar ke bare mein, let's enjoy the super hit song from the 1971 movie Anubhav. Pehle hum ye gana sun lete hain.
Jao na kaho anjaan mujhe, jaan kaho rehti hai sada. Jao na kaho anjaan mujhe, jaan kaho rehti hai sada.
अपनी दिलकश आवाज से लगभग 3 दशकों तक करोड़ों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाली गीता दत्त का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा हनुमान प्रसाद से ली थी और साहिब बीवी और गुलाम फिल्म हो, चाहे छोटी बहू मीना कुमारी की फिल्म रही हो, लेकिन जो दर्द है उनकी आवाज में दिखाई देता है। आइए सुनते हैं उनके ये कुछ मशहूर गीत।
बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं ये तेरा हम। बाबूजी धीरे चलना, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। मेरा नाम चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रक्त चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, बाबा बाबा बाबा।
और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं को अनुमति दें। तो दिव्या तोमर और रेणु कटारिया को अनुमति दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही हम दोनों की तरफ से नमस्कार।